नमस्कार, भारत 30 अगस्त दिन रविवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की स्वाभिमान रैली आज, शक्ति परीक्षण के जरिए भाजपा को जवाब देने की होगी कोशिश।
सारे बिहारी भाइयों को जिस तरह से गाली दिया गया, तो खून में खराबी है, डीएनए में खराबी है, एक गांव गांव में बात चली गई है सब जगह।
आम आदमी पार्टी ने अपने दो सांसदों को किया निलंबित और ओडिशा के अस्पताल में बच्चों की मौतों का सिलसिला है जारी, अब तक 48 मौतें, अस्पताल कहता है ये मौतें ज्यादा नहीं।
जो हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल इतने आईसीयू मैनेज कर रहे हैं, इतने सीरियस बच्चों मैनेज कर रहे हैं, वो भी सेम डाटा, इट्स नॉट कोई ज्यादा नहीं है।
खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। बिहार की राजधानी पटना में आज जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन की रैली होगी। महागठबंधन ने इसे स्वाभिमान रैली नाम दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मंच साझा करेंगी। रैली में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बिहार में हुई रैलियों में महागठबंधन को लेकर जो सवाल उठाए हैं, आज की रैली में महागठबंधन के नेता उनका जवाब देने की तैयारी में हैं। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में प्रवासियों के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन नाजी विरोधी समूहों ने किया था। प्रदर्शन के दौरान लोग प्रवासियों का स्वागत करने वाले बैनर थामे हुए थे। इस शहर में हाल में प्रवासियों के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्कल ने जब पास के शहर में शरणार्थी केंद्र का दौरा किया था, तो लोगों ने उनका विरोध भी किया था। पाकिस्तान तहरीके पार्टी इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग के सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी पार्टी 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। इमरान खान ने लाहौर में कहा कि 21 राजनीतिक दलों का दावा है कि 2013 के आम चुनावों में धांधली हुई थी, ऐसे में आयोग के सदस्यों का बने रहना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपों की जांच हुई तो चुनाव आयोग के सदस्यों को जेल जाना होगा। इमरान खान 2013 के आम चुनावों के वक्त से ही धांधली के आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा,
सब तैयारी कर लो तहरीक इंसाफ वालों, सारे पाकिस्तान में जिधर जिधर सुन रहे हो मेरी बात, तैयारी कर लो, 4 अक्टूबर को आप सबने इस्लामाबाद पहुंचना है इलेक्शन कमीशन के सामने। यही पंजाब का इलेक्शन कमिश्नर जिसने धांधली करवाई थी, अगर इन्होंने इलेक्शन करवाया, इसलिए तैयारी कर लो, अब 4 अक्टूबर को पाकिस्तान की नौजवान हमारी ख्वातीन सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
ये थे इमरान खान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र में अल जजीरा के 3 पत्रकारों को दी गई सजा पर अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। रविवार को मिस्र की एक अदालत ने 3 पत्रकारों को गलत खबर प्रसारित करने और उचित परमिट न लेने का दोषी ठहराया और 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। बीबीसी समाचार।
स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम में आपका। आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और हमारी मोबाइल साइट के जरिए अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव, और आपके साथ मैं हूं अशोक कुमार। आज सबकी नजरें होंगी पटना के गांधी मैदान पर, जहां एक साथ मंच पर होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की स्वाभिमान रैली। इस रैली के जरिए महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी मुहिम का बिगुल बजाएगा और इनके नेताओं के निशाने पर जाहिर तौर पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
महागठबंधन की बिहार स्वाभिमान रैली के लिए पटना का गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। गांधी मैदान ही नहीं पूरा पटना शहर रैली के रंग में रंगा हुआ है। आज दिन के 11 बजे से शुरू होने वाली इस रैली के जरिए राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाला अलायंस यानी कि महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ अपने संयुक्त चुनाव अभियान की शुरुआत करेगा। आज की रैली की खासियत यह है कि इसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी। साथ ही कुछ दिनों से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी को भी लालू प्रसाद मनाने में सफल रहे हैं। सपा की ओर से शिवपाल सिंह यादव रैली में शिरकत करेंगे। रैली के संबंध में लालू ने कल कहा,
गांव गांव से लोग चल दिए हैं कि चलो जंगल राज जो बोलता था इसको बता दिया जाए पटना में। जिनको जंगली बोलता था, क्रिमिनल अपराधी बोलता है लोग, तो गांव गांव से जो खबर आई है कि लोग बोलते हैं चलो इतना जुट के गांधी मैदान में कि लोग देखेंगे भाई हम लोग जंगली है कि क्या है, अब बीजेपी भी देख ले। ये अंतिम लड़ाई है, ये समझो। और इस लड़ाई में सारे बिहारी भाइयों को जिस तरह से गाली दिया गया, ये खून में खराबी है, डीएनए में खराबी है, ये गांव गांव में बात चली गई है सब जगह।
रैली में शामिल होने के लिए कल दोपहर से ही सूबे के कोने कोने से लोगों का पटना आना शुरू हो गया था। महागठबंधन के नेताओं के आवास पर इन लोगों के ठहरने और भोजन का इंतजाम किया गया है। स्वाभिमान रैली को लेकर शनिवार को नुक्कड़ सभाएं की गईं, तो वहीं घोड़ों के साथ जुलूस भी निकाला गया। लालू यादव ने रोड शो किया तो नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान जाकर तैयारियों का मुआयना किया। रैली के बारे में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा है,
महागठबंधन द्वारा जो आयोजित रैली है वह भाजपा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बिहार में तमाम जो रैली अब तक हुए हैं या जो रैली होगी उस सब पर भारी होगा। भाजपा के लिए यह महागठबंधन की रैली राजनीतिक महाप्रलय होगा और कल झूठ का पर्दाफाश उन काम करेंगे। और ये रैली की तैयारी पूरे शबाब पर है और गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा।
रैली में हर नेता के निशाने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहेगी। ऐसे में रैली से ठीक पहले भाजपा भी हमलावर हो गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे कहते हैं,
तीन व्यक्ति एक साथ कल बिहार के मंच पर बिहार की जनता को दर्शन देंगे, जिसमें एक अहंकारी व्यक्तित्व के धनी श्री नीतीश कुमार जी दिखाई पड़ेंगे, एक भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी दिखाई पड़ेंगी और सजा याफ्ता राजनेता के रूप में श्री लालू प्रसाद जी दिखाई पड़ेंगे।
महागठबंधन की ओर से यह दावा किया गया है कि आज की रैली ऐतिहासिक होगी। दावे की हकीकत अगले चंद घंटों में सामने आ जाएगी, लेकिन लोगों की तादाद के साथ साथ यह भी देखने वाली बात होगी कि वे कितने जोश खरोश से इसमें शामिल होते हैं और रैली के जरिए कितना जोश महागठबंधन के नेता अपने समर्थकों में भर पाते हैं। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
तो पटना में आज है महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। चलिए सीधे चलते हैं पटना, जहां से फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े हैं खुद मनीष शांडिले। तो मनीष, क्या कुछ तैयारी इस समय आपको गांधी मैदान में दिख रही है जहां आज ये रैली होनी है?
जी, गांधी मैदान बिल्कुल, जो गठबंधन के अलग अलग दल हैं उनके जो बैनर हैं, उनके झंडे हैं, उनसे पटा हुआ है। तो व्यवस्था की बात करें तो दो मंच बने हुए हैं। मैं थोड़ी दूरी पे हूँ क्योंकि आसपास शोर थोड़े ज्यादा है। तो
जी,
दो मंच बने हैं वहाँ, जिसपे एक मंच पे जो प्रमुख नेता है दोनों दलों के वे रहेंगे। इसके अलावा गांधी मैदान में भी लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी, तो जैसे कि सुबह का माहौल है तो लोग तैयारी में जुट गए हैं, 11 बजे से रैली होनी है।
जी, सुना है डीएनए सैंपल लेने के लिए भी काउंटर बनाए गए हैं रैली स्थल पर।
अशोक, ये जो पूरा आज की रैली है, ये एक तरह से जो डीएनए सैंपल का जो शब्द वापसी अभियान है उसके पहले चरण के समापन पे किया जा रहा है। मैं आपको दिलाऊं, अपने श्रोताओं को याद दिलाऊं, तो 10 अगस्त को जब शब्द वापसी अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी कुमार ने, तो उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख सैंपल भेजेंगे पहले चरण में, 30 अगस्त को एक स्वाभिमान रैली करेंगे और उस दिन 5 लाख सैंपल भेजेंगे। तो इनका तो दावा है कि हम 5 लाख सैंपल पूरे इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लगभग 80 के करीब आज जैसे काउंटर या जगह बनाई गई है जहाँ पे जो शामिल होने के लिए लोग आए हैं रैली में, वो अपने डीएनए का सैंपल पे बाल और नाखून वगैरह दे सकते हैं।
जी, लग रहा है नीतीश कुमार ये जो डीएनए का मुद्दा है, जो नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था उनके बारे में, उस मुद्दे को फिलहाल जेडीयू और महागठबंधन छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका पटना से। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसके कुल सांसद हैं 4 और इनमें से 2 को कल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। निलंबित किए गए सांसदों में पटियाला से धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से हरिंदर सिंह खालसा हैं। हमारे साथी समीरात्मज मिश्र ने बात की धर्मवीर गांधी से और पूछा कि किस लिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है।
पंजाब में अमृतसर के पास बाबा बकाला का हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे पंजाब के वॉलंटियर जो जिनका नंबर 5,000 से ज्यादा था और जो पंजाब के 22 जिलों से आए थे, उनकी ये शिकायत रही है कि कार्यकर्ता हैं, उनको अपने राज्य की जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए संगठन चलाने के लिए, उस पे की जो केंद्र अंकुश लगा रहा है, जिसका जो हनन कर रहा है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है, उसके खिलाफ ये पंजाब के 22 के 22 जिलों के वॉलंटियर ने मीटिंग बुलाया था। तो मैं एक पंजाब का प्रतिनिधि होने के नाते तो मैं और खालसा जी हम दो लोग वहां गए थे और लोगों की बातें सुनी। लोगों के मन में बहुत आक्रोश था बुनियादी असूलों से और कॉम्प्रोमाइज किए जा रही है। जब भी इस खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको ये धमकियां भी देते हैं, निकालने की और निकालते भी है।
जी डॉक्टर गांधी, ये आपने जिस घटना का जिक्र किया अमृतसर वाली घटना का, तो ये हाँ। केवल अनुशासनहीनता की ये के यही वजह आपको बताई गई है या और भी, चूंकि आप दोनों लोगों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कई बार इस तरह की बातें चली कि आशंकाएं जताई गई कि निकाला जा सकता है या फिर पार्टी नेतृत्व हाँ। आपसे खुश नहीं था।
हाँ, तो देखो मेरा काम पार्टी नेतृत्व खुश करने, मेरा काम उन सिद्धांतों पे पहरा देना जिन सिद्धांतों के कारण मैंने 65 साल की उम्र में अपने प्रोफेशन को छोड़कर या उसको कॉम्प्रोमाइज करके एक आशा के साथ हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलकर सपना लिया था एक वैकल्पिक राजनीति का। जब भी उस पे आंच आएगी तो पार्टी खुश है या नहीं है मुझे उसकी परवाह नहीं है।
तो डॉक्टर साहब आपका क्या ये कदम होगा अगर पार्टी आपको निकालती है, अभी तो कारण बताओ नोटिस दिया गया है, पार्टी निकालती है तो क्या आपका कदम होगा अगला?
अगर मेरे को लगेगा कि पार्टी निकालती है तो मैंने लोगों की सेवा करनी है। 40 साल से डॉक्टरी के रास्ते करता रहा हूँ और अब भी मैं डॉक्टरी के रास्ते करता रहूंगा और अपनी MP के नाते करता रहूंगा।
पार्टी के किसी केंद्रीय नेता से इस बारे में कोई बात हुई है आपकी?
मेरे से काफी देर से उन्होंने कोई बात नहीं की।
आपने खुद भी नहीं किसी से बात की?
नहीं, मैंने संजय सिंह से 2 महीने पहले बात किया था चंडीगढ़ के एक पंजाब से हिमाचल भवन में, तो मैंने बता दिया कि मेरी पोजीशन क्या है पार्टी की नीतियों के बारे में। तो उसने कहा कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, देखते हैं समय के साथ अगर कुछ बदलाव का अगर कोई बात हो सकती साथ।
और पार्टी से जो पहले निकाले गए नेता हैं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन लोगों से कोई आपकी बातचीत हुई इस बारे में? किसी ने आपको फोन किया?
बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई। मैं जब तक मैं पार्टी में हूँ मैं पार्टी का अनुशासन से रहूंगा, पार्टी चाहे जो भी मेरे बारे में करती रहे। सभी पार्टी जब बनती है तो सभी सिद्धांत लेकर आती है और धीरे धीरे उनमें भटकाव शुरू होता है। कांग्रेस भी आपको बता दूं कि कांग्रेस को 90 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। बीजेपी को 28 साल लगे ये कहने के लिए कि मोदी बीजेपी बीजेपी मोदी। और हमारी पार्टी का जो पॉलिटिकल कल्चर है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ 2 साल लगे ये पहुँचने के लिए कि अरविंद आप इस।
ये थे आम आदमी पार्टी से निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा के निलंबन को सही बताया है।
पिछले कुछ समय से लगातार पार्टी की नीतियों के खिलाफ, पार्टी के निर्णयों के खिलाफ हमारे ये दोनों सांसद बोल रहे थे और एक बड़ा मिशन पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी लेके चल रही है, जो वहाँ करोड़ों जनता के लिए जो मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, नशाखोरी का, उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम कर रहे थे। और आज खुले तौर पे उन्होंने बाबा बकाला में एक सभा आयोजित की जिसमें पैरेलल मीटिंग की, समानांतर मीटिंग की।
संजय सिंह उचित ठहरा रहे थे दोनों सांसदों के पार्टी से निलंबन को। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की इस कलह ने भाजपा को उस पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा कहते हैं,
ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विषय है और मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर एक बात बड़ा स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि किसी भी संगठन में लोकतंत्र का बोलबाला होना चाहिए, उसमें डेमोक्रेटिक तरीके से काम होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के डिक्टेटोरियल रवैये से उन्हीं के पार्टी के लोग परेशान हैं। और एक फ्रेंडली एडवाइस तो हम ये दे ही सकते हैं कि देखिए, जिनसे अपना घर नहीं संभलता है वो बिहार और पूरा देश संभालने क्यों जा रहे हैं, पहले तो घर संभालना चाहिए।
आम आदमी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए, सलाह दे रहे थे भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा। उधर भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा के कटक में एक अस्पताल में बच्चों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को फिर इस अस्पताल में 6 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों में शिशु भवन नाम से जाने जाने वाले इस अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। हमारे साथी संदीप साहू ने इस अस्पताल का दौरा किया और उसके बाद ये रिपोर्ट भेजी।
नयागढ़ जिले के उड़गा निवासी विजय सेठी की पोती शनिवार की शाम चल बसी। पिछले 20 तारीख को शुरू हुए बच्चों की मौत के सिलसिले में न्यूमोनिया से पीड़ित इस 3 महीने की बच्ची का नंबर 46 था। मजदूरी कर गुजारा करने वाले सेठी ने अपनी पोती के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था और पिछले 8 दिनों में करीब 60,000 रुपये खर्च कर डाले थे। पोती की मौत के बाद सेठी जब अस्पताल से बाहर आए तो उनके मन में दुख से ज्यादा गुस्सा था। उन्हें यकीन था कि उनकी पोती की मौत इलाज में लापरवाही की वजह से हुई है। इलाज में लापरवाही तो हुई है, अगर सर्जन मरीज को देखने ही नहीं आएंगे तो फिर मरीज को यहाँ लाने का क्या फायदा। मैं 7-8 दिन तक यहीं था और पिछले 2 दिन से ही गांव गया था। इस बीच मैंने किसी डॉक्टर को यहाँ आते हुए नहीं देखा। विजय सेठी ही नहीं बल्कि अपना बच्चा खोने वाले लगभग सभी परिवार वालों का यही मानना है, लेकिन अस्पताल के अधिकारी लापरवाही के आरोपों का जोरदार खंडन करते हैं। शिशु भवन के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर निरंजन महांती ने बीबीसी से बातचीत के दौरान इन मौतों का कुछ अलग ही कारण बताया।
हमने देखा कि ये जो है सब लास्ट मोमेंट में सब पेशेंट आ रहे हैं और हमारे ये ऑब्जर्वेशन कि 24 घंटे के अंदर पेशेंट एडमिशन का 24 घंटे के अंदर मोर देन 50% डेथ हुआ है। इसका मतलब सब क्रिटिकल स्टेज में और लास्ट मोमेंट में बाहर से पूरा उड़ीसा से आ रहे हैं।
डॉक्टर महांती का कहना सच हो सकता है, लेकिन उन्होंने आगे जो कहा वो बिल्कुल चौंका देने वाला था।
नहीं, आप देखिए, ये जो पूरा जो डेथ हो रहा है ये नेशनल फिगर के बराबर है और पेरिनेटल डाटाबेस भी वही बोल रहा है। जो हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल इतने आईसीयू मैनेज कर रहे हैं, इतने सीरियस बच्चों मैनेज कर रहे हैं, वो भी सेम डाटा, इट्स नॉट कोई ज़्यादा नहीं है।
वैसे मीडिया में ये खबर सुर्खियों में आने के बाद मरीजों के परिवार वालों से पैसा ऐंठने का काम कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। झारखंड के सचिन कुमार ने बताया कि शनिवार से उन्हें बेड और दवा मुफ्त में मुहैया किए जाने का आश्वासन दिया गया है।
पहले 22 दिन खरीदना पड़ा, आज 23 दिन हो गया। कल शाम 5:30-6 बजे हम गए थे कलेक्टर के पास, उसको बताया अपना प्रॉब्लम, जैसे सर हम इतना दिन से मेरा घर वहाँ है, झारखंड है, आधा डिगा पड़ता है, निम्न ब्लॉक पड़ता है, इसलिए हम कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर बोला तुम्हारा समस्या क्या है, हम बोले मेरा पैसा है बिल्कुल नहीं है, मेरे पास जितना पैसा था खत्म हो गया। तो उन्होंने कल 500 रुपया दिया, बोला कल से बेड चार्ज और जितना मेडिसिन लगेगा सब फ्री में मिल जाएगा।
शनिवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अरुण पंडा के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने शिशु भवन में स्थिति की समीक्षा की। प्रधान ने बाद में कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो भी प्रस्ताव दिया जाएगा उस पर केंद्र सहानुभूति से विचार करेगी, लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, बीजेडी हो या बीजेपी, लोग अब इस तरह के आश्वासन से उब चुके हैं। उनकी मांग है कि अब कुछ कारगर कदम उठाए जाएं जिससे इस अस्पताल में मौत की तांडव लीला बंद होगी। संदीप साहू, बीबीसी भुवनेश्वर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। लेबनान की राजधानी बेरूत में कल हजारों लोगों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार को खत्म करने और निष्क्रिय हो चुकी राजनीतिक व्यवस्था, जैसा कि उन्होंने कहा, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वात्सल्य राय से।
लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर गूंजते ये नारे सरकार की सुस्ती तोड़ने के लिए लगाए गए। बेरूत की सड़कें कचरे से पट गई हैं, लोग बढ़ती गंदगी से नाराज हैं और इसके खिलाफ उन्होंने यू स्टिंग यानी आप बदबूदार हैं अभियान शुरू किया है। लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की वजह से सरकार इस समस्या का समाधान नहीं तलाश पा रही है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अपने हाथ में लेबनान का झंडा थामे हुए थे, उनके पास किसी राजनीतिक दल का बैनर नहीं था। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि प्रदर्शनकारी पूरे राजनीतिक तंत्र के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल हुए कई लोग जो टी शर्ट पहने हुए थे उन पर लिखा था यू स्टिंग। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश कचरे में तब्दील हो गया है, इसलिए हम प्रदर्शन करने आए हैं। बीते महीने से लेबनान का सबसे बड़ा कचरा जमाव केंद्र बंद होने से बेरूत की सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया है। सरकार अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकी है। सरकार का कहना है कि कचरा प्रबंधन करने वाली निजी कंपनियां जो फीस मांग रही हैं वो बहुत ज्यादा है। विरोध के लिए सड़क पर उतरे लोगों ने पर्यावरण मंत्री से 72 घंटे में इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन अमूमन शांतिपूर्ण रहा। मास्क लगाए कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने कचरे में आग लगा दी और पुलिस पर पत्थर और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया था। बीते सप्ताह ऐसे ही प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पिछले हफ्ते हुई हिंसा की जाँच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय करने और सरकार से तुरंत संसदीय चुनाव कराने की मांग भी की। लेबनान में बीते एक साल से राष्ट्रपति पद खाली है। नए सिरे से चुनाव कराने के कानून पर सहमति नहीं बनने के बाद सांसदों ने अपना कार्यकाल 2017 तक के लिए बढ़ा लिया है।
बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा आपको सुना रहे थे वात्सल्य राय।
इनको पहले 2 गोलियां लगी, फिर 2 गोलियां और लगी और वो अटैक आगे बढ़ते गए। उसके बाद में ब्रूटल बेनेट फाइट हुई।
कहता साहब मैंने तो मर जाना है, हम हमला करने आए हैं, आप आगे चलिए, मेरी परवाह मत करो। उसने मेरे से बात की, अपना ट्रिगर दबाया, एक ग्रेनेड गया, मैंने पूछे मुड़ कर देखा,
यू एस रेड। कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा।
साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर सुनिए रेहान फजल की एक खास पेशकश 1 सितंबर से शाम में दिन भर और सुबह विश्व भारती में।
तो जल्दी लेकर आएंगे ये सीरीज और अब समय हो चला है प्रेस रिव्यू का, यानी अखबारों का। क्या कुछ अखबार आज के कह रहे हैं वात्सल्य जी बताइए।
अशोक जी, आम आदमी पार्टी ने अपने 2 सांसदों धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा को निलंबित कर दिया है
जी।
इसे लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, आपने 4 में से 2 सांसदों को निलंबित किया,
50% सांसद निकाल दिए।
जी जी बिल्कुल। दैनिक जागरण ने इसी जो आपने कहा उसी तरह की हेडलाइन दी है, आपके आधे सांसद सस्पेंड। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है और लिखा है आपने पार्टी विरोधी गतिविधि में पंजाब के 2 सांसदों को निलंबित किया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिलचस्प जानकारी को अपनी लीड खबर बनाया है। अखबार लिखता है कि सरकार नेगेटिव खबरों पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने की योजना तैयार कर रही है। यानी सरकार के खिलाफ जो नेगेटिव खबरें आती हैं उस पर तुरंत रिएक्शन करने के लिए।
सरकार को ये भी जानना चाहिए कि उनके आलोचक फिर इसे सेंसरशिप का भी नाम दे सकते हैं।
जी बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी लीड खबर में जानकारी दी है कि 10 साल के दौरान यानी 2001 से 2011 के बीच छात्रों की संख्या में 38% का इजाफा हुआ है। कई अखबारों ने खेल की खबरों को लीड खबर बनाया है। नवभारत टाइम्स ने खेल की 3 खबरों को जगह दी है। इसमें भारतीय महिला टीम को 36 साल के बाद ओलंपिक का जो टिकट मिला है उसकी
हॉकी टीम को
टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को खेल रत्न पुरस्कार मिला है और कोलंबो टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा और अमित मिश्रा के बीच 8वें विकेट के लिए एक रिकॉर्ड बना है, 104 रन की साझेदारी हुई है। इन तीनों खबरों को लेकर उसने अपनी लीड खबर बनाया है। हिंदुस्तान ने भी हॉकी और सानिया की खबर को लीड खबर बनाया है। वहीं दैनिक भास्कर ने अपनी लीड रिपोर्ट में जमैका के चैंपियन धावक यूसेन बोल्ट की 8 खूबियों की जानकारी दी है। कई अखबारों ने पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। जनसत्ता अखबार ने लिखा है कि हार्दिक आज करेंगे दिल्ली का कूच। इसी तरह महागठबंधन की जो रैली आज होने वाली है उसको लेकर भी कई अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। जनसत्ता ने लिखा है कि सोनिया गांधी रैली में शामिल होंगी। इसके अलावा कुछ खबरों ने इसे महागठबंधन का इम्तहान भी बताया है, जैसे नवभारत टाइम्स ने इसे इम्तहान बताया है। अमर उजाला ने एक अहम खबर अपनी लीड खबर बनाई है कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों को केंद्र सरकार उन पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। इसी तरीके से जो हाई प्रोफाइल शीला बोरा मर्डर केस है उसे भी ज़्यादातर अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है।
बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वात्सल्य आपका। और अब चलते हैं खेल की दुनिया की तरफ, जहां कल खेल पुरस्कारों का वितरण हुआ। किस किस को पुरस्कार मिले बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
शनिवार की शाम गुलजार हुई राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजीव गांधी खेल रत्न एवं द्रोणाचार्य तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों से। इन दिनों महिला युगल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली सानिया मिर्जा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। सानिया मिर्जा से पहले ये उपलब्धि केवल लियंडर पेस को टेनिस के खेल में मिली है। सानिया मिर्जा इस पुरस्कार को पाकर बेहद खुश है।
सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2009, फ्रेंच ओपन 2012 और विंबलडन 2015 में महिलाओं का युगल खिताब भी जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2015 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सानिया मिर्जा।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मैं बहुत हम्बल्ड हूँ। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगी गवर्नमेंट को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को फॉर नॉमिनेटिंग मी एज वेल, और टू द होल कंट्री फॉर फीलिंग कि मैं इस पुरस्कार के काबिल हूँ।
आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्टिना हिंगिस के साथ जो आपकी जोड़ी बनी है और दुनिया भर के टूर्नामेंट जीते हैं, ये कितना स्पेशल है आपके लिए?
ऑफ कोर्स बहुत स्पेशल है। मैं और मार्टिना जब से वी स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड होपफुली वी कैन कीप कंटिन्यूइंग। आई थिंक शी इज अ ग्रेट चैंपियन एंड टुगेदर वी कंबाइन रियली वेल।
बीते ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली महिला जिमनास्टर दीपा कर्माकर को अर्जुन पुरस्कार मिला। बेहद कम उम्र में पदक और उसके बाद अब बड़ा पुरस्कार पाकर उनकी खुशी दोगुनी हो गई है।
बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन अवार्ड मिल रहे मुझे, और आगे भी रखने की कोशिश करूंगी कि आगे भी मेरा रिजल्ट ऐसे आए और ऐसे ही अवार्ड कुछ मेरे पास आए।
पिछले साल चाइना ओपन जीतकर बैडमिंटन की दुनिया में तहलका मचाने वाले के श्रीकांत अर्जुन पुरस्कार पाकर मानते हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है।
पहले कोई नहीं जानता है तो इट्स लाइक ओके, बट नाउ इतने लोग जानते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स मी टू विन।
कभी भारतीय हॉकी टीम के शानदार गोलकीपर रहे रोमियो जेम्स को ध्यानचंद पुरस्कार मिला। रोमियो जेम्स मानते हैं कि अब भारतीय हॉकी की दशा और दिशा सही है।
भी देखिए पिकअप करा है और यंगस्टर्स में भी काफी उत्साह है ना कि BHIL हो रहा है, वो भी अच्छा है प्लेयर्स के लिए, काफी लोग बच्चे हैं मतलब उतावले हैं खेलने के लिए।
वैसे इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, जबकि 5 द्रोणाचार्य बने और 3 ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित हुए।
और खेलों की खबरों के बाद अब समय हो चला है मुख्य समाचारों का।
BBC समाचार। बिहार की राजधानी पटना में आज जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन की रैली होगी। जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में प्रवासियों के समर्थन में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का आयोजन नाजी विरोधी समूहों ने किया था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग के सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी पार्टी 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। मिस्र में अल जजीरा के 3 पत्रकारों को दी गई सजा पर अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। अमरीका में आए तूफान कैटरीना से हुई तबाही के 10 साल पूरे होने के मौके पर न्यू ऑरलियंस में कंसर्ट का आयोजन किया गया है,
जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एक घंटे बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। कार्यक्रम विश्व भारती में होंगी कुछ और अलग खास रिपोर्टें, जरूर सुनिएगा। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। नमस्कार।